ये आकाशवाणी दिल्ली है। नागर विमानन महानिदेशालय ने भारतीय विमान बेड़े में मौजूद 34 बोइंग 787 विमानों की विस्तारित जांच के आदेश दिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दिल्ली विधानसभा में ई विधान प्रणाली की आधारशिला रखी। आयुष मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग पर आधारित हाइब्रिड वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट का आयोजन। राजधानी की रियल एस्टेट व्यवस्था को सशक्त पारदर्शी और विकासोन्मुख बनाने की दिशा में आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक हुई और 21वें दिल्ली इंटरनेशनल ओपन ग्रैंडमास्टर शतरंज टूर्नामेंट में ग्रैंडमास्टर अभिजीत गुप्ता ने दिल्ली जीएम ओपन का खिताब जीता। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। नागर विमानन महानिदेशालय ने भारतीय विमान बेड़े में मौजूद 34 बोइंग 787 विमानों की विस्तारित जांच के आदेश दिए हैं। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने आज नई दिल्ली में कहा कि इनमें से 8 विमानों का तत्काल निरीक्षण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि घटना की जांच के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जा रही है। गृह सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे।
We have constituted the committee. We have circulated the order also. The high-level committee which is going to investigate this crash. The Home Secretary is going to be the chairman of the committee. Secretary Ministry of Civil Aviation, additional secretary from MHA, one representative from the state of Gujarat where the incident actually happened, representative from State Disaster Response Authority, Government of Gujarat, Police Commissioner Ahmedabad, DG Inspection and Safety from the Indian Air Force, DG BCAS which is the Bureau of Civil Aviation Security, DG DGCA, Special Director from IB and Director from the Directorate of Forensic Sciences Services.
विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया है। मृतकों की पहचान करने और उनके पार्थिव शरीर परिजनों को सौंपने के लिए डीएनए परीक्षण किए जा रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज दिल्ली विधानसभा में ई विधान प्रणाली यानी कागज रहित कार्य प्रणाली की आधारशिला रखी। श्री रिजिजू ने इस अवसर पर कहा कि ई विधान परियोजना विधायी दक्षता और पारदर्शिता के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि कई राज्यों ने पहले ही ई विधान प्रणाली को सफलतापूर्वक लागू कर दिया है। श्री रिजिजू ने जोर देकर कहा कि ई विधान पहल केवल कागज का इस्तेमाल बंद करने के बारे में नहीं है, बल्कि विधायी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, सार्वजनिक भागीदारी, दक्षता और डिजिटल सुरक्षा बढ़ाने के बारे में है। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस पहल को ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया, जिसका उद्देश्य विधानसभा के कामकाज को अधिक कुशल, पारदर्शी और पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना है। इस अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि कागज रहित कार्य प्रणाली अपनाने से न केवल विधायी प्रक्रिया आधुनिक होगी, बल्कि राजधानी में डिजिटल शासन के लिए एक मानक भी स्थापित होगा। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए एक विशेष तंत्र बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है, जिसमें बीच बचाव, मध्यस्थता और समझौता शामिल हैं। वे आज नई दिल्ली में संस्थागत मध्यस्थता विवाद समाधान के लिए एक प्रभावी रूपरेखा बनाने के उद्देश्य से आयोजित सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस तरह का विशेष तंत्र के होने से न केवल निवेशकों और अन्य हितधारकों को लाभ होगा, बल्कि इससे देश की अदालतों पर बोझ भी कम होगा। इस एक दिवसीय सम्मेलन में संस्थागत मध्यस्थता के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विवाद समाधान प्रणाली को सशक्त बनाने और सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों का इस्तेमाल करने तथा देश में मध्यस्थता के पारिस्थितिकी तंत्र के भविष्य पर आयोजित सत्र शामिल हैं। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि योग वैश्विक कल्याण के प्रति भारत की महत्वाकांक्षा को प्रदर्शित करता है। नई दिल्ली में वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट में श्री जाधव ने कहा कि योग भारत की ओर से विश्व शांति के लिए पूरे संसार को एक उपहार तथा विरासत है। उन्होंने कहा कि योग सिर्फ बीमारियों से बचाव ही नहीं करता, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करता है।
योग डायबिटीज के प्रबंधन, हृदय स्वास्थ्य में सुधार और यहाँ तक कि कैंसर रोगियों और बुजुर्गों को उनकी बीमारी से बेहतर तरीके से निपटने में मददगार है। योग सिर्फ आध्यात्मिक और ध्यान का ही अभ्यास नहीं है बल्कि यह स्वास्थ्य क्षेत्र में रोजगार के अपार अवसर भी प्रदान करता है।
इस अवसर पर संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि योग धर्म, लिंग और भाषा की सीमाओं से परे है।
योग भारत की प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है। ये मन शरीर की एकता, विचार और क्रिया, संयम और पूर्ति, मनुष्य और प्रकृति के बीच में सामंजस्य, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण का प्रतीक है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। राजधानी की रियल एस्टेट व्यवस्था को सशक्त, पारदर्शी और विकासोन्मुख बनाने की दिशा में आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी प्रमुख सरकारी और औद्योगिक भागीदारों ने सरकार के सामने दिल्ली के रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़ी 10 प्रमुख चुनौतियों और उनके व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार दिल्ली को एक सुगठित, पारदर्शी और नागरिक हितैषी रियल एस्टेट मॉडल की दिशा में ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। बैठक में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन, रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज और भारतीय उद्योग परिसंघ के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज कहा कि दिल्ली सरकार एक ऐसी राजधानी बनाना चाहती है जो साफ सुथरी तथा हरी भरी हो, जिसे सही मायनों में लोग दिलवालों की दिल्ली कहें। मुख्यमंत्री ने ये विचार दिल्ली सचिवालय में एक पुस्तक के विमोचन पर व्यक्त किए। इस दौरान श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार इसको लेकर जल्द ही सख्त आदेश जारी करेगी। मुख्यमंत्री ने शहरवासियों से अपील की कि वे दिल्ली को साफ सुथरा बनाने में पूरा योगदान दें।
जो शहर है वो केवल सरकारों के करने का काम नहीं है कि केवल सरकारें लगेंगी, सरकारें कर लेंगी और शहर ठीक हो जाएगा। नहीं, जब तक समाज का हर एक व्यक्ति इस मुहिम से जुड़ेगा नहीं, ये तय नहीं करेगा कि ये जो शहर है ये मेरा अपना है, तब तक शहर साफ सुथरा, सुंदर, हरित हो ही नहीं सकता। मिल करके सबको जिम्मेवारी समझनी होगी।
दिल्ली सरकार राजधानी में जल्द ही नई आबकारी नीति लाने जा रही है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य अच्छी गुणवत्ता वाली शराब की उपलब्धता सुनिश्चित करना और बिक्री तथा वितरण प्रणाली को पारदर्शी, आधुनिक और जवाबदेह बनाना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि नई नीति में आबकारी प्रणाली में कई सुधार किए जाएंगे, जिसमें शराब की गुणवत्ता का वैज्ञानिक परीक्षण, बिक्री प्रणाली का डिजिटलीकरण, अवैध बिक्री पर सख्त कार्रवाई और लाइसेंसिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना शामिल है। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार की अगुवाई वाली समिति आबकारी नीति के हर पहलू पर बारीकी से काम कर रही है। दिल्ली सरकार द्वारा लाए गए नए स्कूल फीस अध्यादेश को लेकर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर अध्यादेश से जुड़ी जानकारी पेश करने की मांग की है। अपने पत्र में श्री यादव ने लिखा कि इस अध्यादेश को सदन में पेश करने से पहले सरकार को माता पिताओं और विशेषज्ञों से विचार विमर्श कर और अधिक सलाह लेनी चाहिए। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद NDMC ने अपने क्षेत्र के निवासियों और सेवा उपयोगकर्ताओं को सूचना सुविधा और शिकायत निवारण प्रदान करने के लिए जयसिंह रोड स्थित NDMC कन्वेंशन सेंटर में एक सुविधा शिविर का आयोजन किया। हमारे संवाददाता ने बताया कि शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए NDMC के विभिन्न विभागों से संबंधित अधिकारियों ने जनता से उनकी शिकायतों पर आमने सामने चर्चा की और उनका समाधान किया।
इस शिविर के माध्यम से अधिकारियों ने जनता से 125 शिकायतें प्राप्त की। इनमें अधिकांश शिकायतें कार्मिक, सिविल इंजीनियरिंग, बागवानी, सार्वजनिक स्वास्थ्य, प्रवर्तन, वाणिज्यिक तथा कर और संपदा विभागों से संबंधित थी। पालिका परिषद के 30 विभागों के 100 से अधिक अधिकारी व कर्मचारी शिकायतों के मौके पर निवारण के लिए शिविर पर मौजूद रहे। वहीं विभिन्न विभागों के हेल्प डेस्क की निगरानी उनके विभागाध्यक्ष करते रहे। इस दौरान NDMC ने अपने निवासियों और सेवा उपयोगकर्ताओं के लिए संपर्क रहित शिकायत निवारण तंत्र के रूप में एक जन सुविधा पोर्टल भी लॉन्च किया। जन सुविधा पोर्टल का उपयोग शिकायत दर्ज करने, उनकी शिकायत की स्थिति पर नजर रखने और शिकायत निवारण तंत्र पर प्रतिक्रिया देने के लिए किया जा सकता है। यह पोर्टल NDMC की वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदर्श।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में कल होने वाले वॉकथॉन रन फॉर फन कार्यक्रम के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने यातायात निर्देशिका जारी की है। पुलिस ने लोगों को कार्यक्रम के दौरान नई दिल्ली स्थित बीपी मार्ग, सीजीओ कॉम्प्लेक्स रोड, मेहरचंद मार्केट और आसपास के क्षेत्रों से बचने की सलाह दी है। वॉकथॉन के दौरान कल सुबह 4 बजे से सुबह 10 बजे तक जेएलएन स्टेडियम के आसपास प्रमुख मार्गों पर यातायात की आवाजाही नियंत्रित या बाधित रहेगी। राजधानी के जनपथ स्थित एक निर्माणाधीन इमारत में आज दोपहर भीषण आग लग गई। दिल्ली अग्निशमन विभाग ने बताया कि आग बुझाने के लिए 15 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। विभाग को आग लगने की जानकारी करीब 11:13 पर मिली। करीब एक घंटे बाद दोपहर 12:20 पर आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। घटना की जांच जारी है। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रविंद्र इंद्राज सिंह ने आज दिल्ली भाजपा कार्यालय में सुगम्य सहायक योजना के तहत ट्राई साइकिल और अन्य सहायक उपकरण जरूरतमंदों को वितरित किए। श्री सिंह ने बताया कि ये अभियान दिव्यांगजनों के आत्मबल, आत्मनिर्भरता और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 के तहत बागपत में आयोजित किसान गोष्ठी कृषक वैज्ञानिक संवाद के समापन दिवस समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने किसानों को पारंपरिक फसलों के साथ चंदन, बांस और अमरूद जैसी नकदी फसलों की भी खेती कर अपनाने को कहा। उपराज्यपाल कार्यालय ने बताया कि श्री सक्सेना द्वारा प्रस्तुत ये वैकल्पिक उपाय किसानों की आत्मनिर्भरता और आय में वृद्धि के लिए एक ठोस कदम साबित हो सकते हैं। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2025 के परिणाम आज घोषित कर दिए गए। स्कोर कार्ड परीक्षा की आधिकारिक वेबसाइट ntanet.nic.in पर उपलब्ध हैं। 21वें दिल्ली इंटरनेशनल ओपन ग्रैंडमास्टर शतरंज टूर्नामेंट दिल्ली जीएम ओपन का खिताब भारतीय ग्रैंडमास्टर अभिजीत गुप्ता ने जीत लिया है। उन्होंने 10 में से 8.5 अंक हासिल कर एशिया के सबसे प्रतिष्ठित ओपन शतरंज टूर्नामेंट में रिकॉर्ड 4थी खिताबी जीत हासिल की। एक रिपोर्ट।
अभिजीत गुप्ता ने 10 राउंड में अजय रहते हुए शानदार प्रदर्शन किया। बेलारूस के ग्रैंडमास्टर मिहेल निकितेंको दूसरे स्थान पर रहे। भारतीय ग्रैंडमास्टर दीप्त्यान घोष ने तीसरा स्थान हासिल किया। दिल्ली शतरंज संघ द्वारा आयोजित इस वर्ष के संस्करण में 20 से अधिक देशों के 2500 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें 24 ग्रैंडमास्टर शामिल थे। उधर छतरपुर के टिवोली गार्डन में आयोजित श्रेणी सी में 1250 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इस खंड के विजेता तमिलनाडु के दिनेश कुमार एच रहे। नैतिक सेट्टी को दूसरा और CBM को तीसरा स्थान मिला। अन्य उल्लेखनीय पुरस्कार विजेताओं में गितेश फोगट, साई कृष्णा एस और AGM योगेश कुमार गुप्ता शामिल रहे। प्रादेशिक समाचार के लिए जया भारती।
खेलों के बाद अब बात मौसम की। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 से 3 दिनों में राजधानी दिल्ली में आंधी तूफान के साथ हल्की बारिश का अनुमान है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार ने ये जानकारी दी।
दिल्ली NCR के लिए आज हम हॉट एंड ह्यूमिड दे रहे हैं। मेन हीट वेव तो नहीं रहेगा, लेकिन जो टेम्परेचर्स हैं वो सामान्य से ज्यादा रहेंगे और उसके साथ जो हुमस है वो भी ज्यादा रहेगी, जिसके कारण क्या है कि डिस्कम्फर्ट लेवल रहेगा। उसको मद्देनजर रखते हुए हमने हॉट एंड ह्यूमिड दिया है और येलो अलर्ट के साथ, और वो आज के लिए ही है। कल से जो हालात सुधर जाएंगे। इसके अलावा जैसे मैंने पहले भी बताया, रेनफॉल एक्टिविटी, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी आज इवनिंग से लेके आने वाले 2-3 दिन कहीं ना कहीं ऐसे दिल्ली में होने का अनुमान है।
दिल्ली में आज दोपहर के समय दिन भर धूप खिली रही, जिससे लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ा। विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 1.9 डिग्री अधिक 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अगले 24 घंटे के दौरान बादल छाए रहने, हल्की बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नागर विमानन महानिदेशालय ने भारतीय विमान बेड़े में मौजूद 34 बोइंग 787 विमानों की विस्तारित जांच के आदेश दिए। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दिल्ली विधानसभा में ई विधान प्रणाली की आधारशिला रखी। आयुष मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग पर आधारित हाइब्रिड वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट का आयोजन। राजधानी की रियल एस्टेट व्यवस्था को सशक्त, पारदर्शी और विकासोन्मुख बनाने की दिशा में आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक हुई। और 21वें दिल्ली इंटरनेशनल ओपन ग्रैंडमास्टर शतरंज टूर्नामेंट में ग्रैंडमास्टर अभिजीत गुप्ता ने दिल्ली GM ओपन का खिताब जीता। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।